आयत नंबर 43 से देखिएगा, दोबारा इसको थोड़ा सा हम साथ मिलाएंगे 43 से। अलम तर अन्नल्लाह युस्जी सहाबन सुम्म युअल्लिफु बैनहू बैनहू सुम्म यजअलहू रुकामा, क्या आपने गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता ले जाता है बादलों को, फिर जोड़ता है इसके बिखरे हुए टुकड़ों को, फिर तह बतह कर देता है इनको, फिर तू देखता है कि बारिश निकलती है इनके दरमियान से, और उतारता है अल्लाह ताला आसमान से बर्फ़ को जो पहाड़ों की तरह होती है, बस नुकसान पहुंचाता है उससे जिसे चाहता है, और फिर देता है इससे जिसको चाहता है। करीब है कि इसकी बिजली की चमक आँखों की बिनाई को ले जाए। इसके साथ ही अब अगली आयत होगी, आयत 44, युकल्लिबुल्लाहुल्लैलवन्नहार, अल्लाह ताला रात और दिन को उलटता फेरता है। इन नफी ज़ालिकला इब्रतल्ली उलिल अबसार, बेशक इसमें इब्रत वाले इब्रत हैं आँखों वालों के लिए। यहाँ पे वो मिसाल पूरी हुई जो कि पीछे परिंदों की मिसाल के बाद बादलों की मिसाल से शुरू हुई। हम थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ अल्लाह ताला कायनात की मिसालें देकर हमें वो पैगाम दे रहे हैं जो अब सूरत के आखिर तक चलेगा। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से सूरत नूर का आखिरी हिस्सा शुरू हो गया। एकदम अजीब सा लगता है मदनी सूरतों के अंदर कायनात की बातें, सूरज चाँद सितारे, अमूमन ये मक्की सूरतों का अंदाज़ होता है, लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने कायनात की बात लाकर हमें बता दिया कि कायनात को अल्लाह ताला ने जो इबादत का तरीका सिखाया था, जो तस्बीह सिखाई थी, वो असल में दूसरे लफ्ज़ों में इजहार है इस बात का कि हर मखलूक वही काम कर रही है जो कि उसको अल्लाह ताला ने दिया। उम्मत मुस्लिमा को पैगाम दिया गया कि इतने इनफरादी अहकामात सुनने के बाद इज्तमाई तौर पर निज़ामों को कायम करने के तस्करे के बाद अब जो चीज़ तुमसे ये काम करवाएगी वो इताअत है, सरकशी मत करो। इस कायनात को देखो, अल्लाह ताला कायनात को हमारे सामने एक उस्ताद की सूरत में पेश करते हैं कि परिंदों की सफ़ें तुम्हें क्या ये नहीं बताती कि तुमको भी सफ़ बंदी करनी है। वो सबक जो नमाज़ों की सूरत में 5 दफ़ा उम्मत मुस्लिमा को दिया जाता है, इस कायनात में परिंदे इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। कोई कब उड़ता है, कहाँ उड़ता है, आगे है कि पीछे है, ये सब बताते हैं कि एक लीडर है और बाकी इताअत करने वाले हैं। आप कह लें कि बाकी सारे मती हैं और एक मुता है। इस कायनात का निज़ाम इसी असूल पे चल रहा है। अगर आप इसको ऊपर से लेना शुरू करके देख लें, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात है मुताए हकीकी, तो ऐसे लिखिएगा मुता, जिसकी इताअत की जाए, और पूरी कायनात लिल्लाहि मा फिस समावाती क्या है, मती, मतीउल्लाह, हम सब मतीउल्लाह, अल्लाह करे हम बन जाएं। ये है खालिक और मखलूक के दरमियान इताअत का रिश्ता। इसके बाद इससे नीचे के दर्जे में आए तो हर दौर का नबी था मुता, जिसकी इताअत की जाए, और उस दौर के लोग थे मुती। मुती से मुराद पे यहाँ वही है कि नबी अल्लाह ही के हुक्मों की बात करते हैं, तो लिहाजा वो है। अल्लाह के नबी सल्लम के दौर पे आ जाइए तो अल्लाह के नबी थे बेहतरीन मुता और सहाबा कराम थे बेहतरीन मोती, और इसके बाद आप इसको हर छोटे लेवल पे लाते जाएं। मुसलमान हुक्मरान कौन होगा, मुता, जिसकी इताअत की जाए, और रियाया अवाम कौन होगी, मोती होगी। जब अच्छे लोग हुक्मरान बनेंगे तो रियाया के ऊपर लाजिम है कि उनकी इताअत करें और फर्माबरदारी करें। फिर इसको छोटे छोटे ग्रोहों पे ले आइए। घर का निज़ाम होगा, शोहर को रिजाल कवामूना कहकर मुता कर दिया और घर वाले मुती होंगे। इसी तरह कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई छोटी बड़ी जमात इस असूल के ऊपर अमल किए बगैर चल ही नहीं सकती। जहाँ सारे ही अपनी राय देने वाले, और राय देना तो बहुत ही अच्छी बात है, जब अपनी राय को दुरुस्त समझने वाले और मानने की बजाय मनवाने वाले बन जाएं तो निज़ाम नहीं चलते। सूरत हज में हम पढ़ चुके कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने बताया कि ज़मीन व आसमान बिगड़ जाते अगर कायनात के अंदर दो खुदा होते। अब यहाँ इन आयात को हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के तनाजर से देखें तो यहाँ एक बड़ी प्यारी मिसाल दे दी गई कि सहाबा कराम सफ बंधे हुए थे, उनके दिल जुड़े हुए थे। और ये जो बादलों वाली मिसाल है, आप देखिए कि बादल क्या है, पानी है ना, नीचे से उठता है, छोटी छोटी टुकड़ियों में जाता है, हवा चलती है, हवा के ज़रिए से बादल उड़ते हैं ना। अब आज के दौर में हवा को क्या कहेंगे आप, नशरियात, आपको मालूम है कि जो भी हमें खबरें रेडियो और टीवी के जरिए से मिलती हैं, ये हवाओं के दोष पे आती हैं ना। बिल्कुल यहीं से सोचें कि अल्लाह के नबी सल्लम उठे, उनके पास एक पैगाम था, हवा चली, यानी तबलीग क्या है, यहाँ इस मिसाल में हवा थी। अल्लाह के नबी सल्लम का वो पैगाम हवाओं के दोष पे इस तरह हुआ कि फितरत को मसख ना किए हुए लोग आपकी तरफ खिंचने लगे। तुफैल दौसी होंगे, अबू बकर होंगे और बड़े बड़े सहाबे कराम जो बिल्कुल अव्वल दौर में मुसलमान हुए, लेकिन होते होते युस जी सहाबन सारे बादलों के टुकड़े छोटे छोटे जमा होते गए। अपनी जगह पे वो कुछ भी नहीं थे। अगर अबू बकर अकेले रहते कुछ ना कर पाते, अगर सलमान फारसी फारस में रहते तो कुछ ना कर पाते, अबू हुरैरा कबीला दौस में होते तो लोगों की बकरियां चराते और उनके बर्तन ही धोते रहते। लेकिन ये छोटे छोटे बादल के टुकड़े जब मिले, सुम्मा युअल्लिफु बैनहुम, फिर अल्लाह ने उनके बीच में उल्फत डाल दी। ये है वो बोंड जो बेकार लोगों को कारामत बनाता है। अल्लाह जब किसी को भी किसी अच्छे काम के लिए चुनता है ना, तो उनको एक जगह जमा करके उनके बीच में उल्फत डालता है। उल्फत कह ले ऐसी है जैसे एल्फी है, इंग्लिश का लफ्ज़ लेकिन नाम बड़ा मिलता है। हम सूरह अनफाल में भी पढ़ चुके कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लम को कहा कि अगर अल्लाह इनके दिलों में उल्फत ना डालता तो ये कभी आपके पास इस तरह ना इकट्ठे होते। उल्फत मोहब्बत डाल देता है अल्लाह ताला बामकसद लोगों के दिलों में। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मोमिनु, मोमिन उल्फत करता भी है और उससे उल्फत की जाती है, अल्लफा युअल्लिफु। और अगर आप इस लफ्ज़ को लिखें ना, इस रूट से कितने ही लफ्ज़ बनते हैं जिसमें एक लफ्ज़ अल्फुन भी है, हज़ार उलूफ हज़ारों, उल्फत एक को हज़ारों में बदल देती है। जिस गिरोह में जहाँ लोग मिल के काम कर रहे हों, दुनिया का या आखरत का, या जहन्नुम में ले जाने वाले प्लान, आज भी आप देखिए कि अच्छे काम जिस तरह कोऑर्डिनेशन से और टीम वर्क से फैलते हैं ना, इसी तरह बुरे काम भी गैंग्स बना के लोग करते हैं, ऑर्गेनाइज किस्म के क्राइम्स होते हैं, वो एक मकसद के होते हैं, मिल जाते हैं। गंदे लोग गंदे लोगों के साथ मिल जाते हैं, अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ मिल जाते हैं। अत्तय्यिबातुलित्तय्यिबून और अलखबीसातुलिलखबीसून, फिर वो सारे मिलते हैं। जब तक किसी ग्रोह के बीच में उल्फत नहीं होती, यज अल हो रुकामन, वो रुकाम नहीं बनते, रुकाम तहें लगती हैं। आप देखिए कि बारिश के एक कतरे को जहन में लाइए, अकेला एक कतरा ज़मीन पे गिरे, इतनी बड़ी ज़मीन किसी की प्यास बुझाएगा? नहीं बुझाएगा ना। यही बात मौलाना हाली ने भी एक कतरे की कहानी में सुनाई कि उसको लगता है कि अगर मैं नीचे गिर भी गया तो मैं तो ज़मीन की प्यास नहीं बुझा सकूंगा, मेरा अपना ही सत्यानाश हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इस दीन के काम को सामने रखते हुए अपने मुकाम को पहचाने, अल्लाह ताला हम सबको दावत देता है कि तुम पानी के बिल्कुल एक कतरे हो। मैं तो अपनी आपको कहूंगी, मैं तो इतना छोटा कतरा अपने आप को महसूस करती हूँ कि शायद एक इंसान की भी प्यास ना बुझा सकूँ अगर इतने साथियों का साथ नसीब ना हो। इतने प्यारे लोग अल्लाह के इस काम में हम सबके साथ मावन ना हो, हम किसी के दीन की प्यास नहीं बुझा सकते। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मुस्लिम मुआशरे कब कायम होंगे, जब इनफिरादी तौर पे इबादत करने वाले, पर्दे करने वाले, नमाजें पढ़ने वाले लोग होंगे, नहीं, इनफिरादी तौर पे नहीं, इज्तमाई निज़ाम कायम होंगे, जब पर्दा इज्तमाई तौर पे नाफिज होगा। और ये कैसे होगा? डंडे के जोर पे नहीं, ये दिल के जोर से होगा। दिल मान जाए, दिल को यकीन हो जाए, फिर इस तरीके से लोग जुड़ते हैं, छोटे छोटे लोग मिलते हैं। जैसे एक मशीन काम करती है तो उस मशीन के मुख्तलिफ हिस्से जो होते हैं वो अहम होते हैं। बाज़ दफ़ा एक छोटा सा तार मिस होता है, पूरी मशीन बेकार हो जाती है। जहाज़ के एक छोटे से पुर्जे में खराबी होती है, पूरा जहाज़ गिर जाता है, डूब जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम में से हर एक अहम है, तुम अपने मुकाम को पहचानो। तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं थी, मान जाए। देखिए बाज़ लोग इस गिल्ट के अंदर और इस कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे करने से क्या होगा, पता नहीं मैं कुछ करती भी हूँ कि नहीं, फ़ायदा ही है, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं। समझ लें कि ये शैतान का जुमला है। बोलें आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुछ नहीं कर सकती लेकिन करूँगी, कोशिश करूँगी। अल्लाह तू मुझे काम का बना ले, जैसे अल्लाह ताला तूने मूसा को किया था, फतन्ना का फतू न या मूसा तुम मजी ना का अला कदर है। मूसा क्या थे? एक गरीब घर के अंदर पैदा होने वाला बच्चा, अल्लाह कितने मरहलों से गुजार के उनको अपने अंदाजों पे ले आया। कौन था हम में से, कौन क्या था? कूड़ा और कड़कट थे, इस गंदी दुनिया के पीछे भाग रहे थे। अगर अल्लाह ने हम सबको जोड़ के एक बारिश की तरह इंसानियत को इल्म देने के काबिल कर दिया, ये सरासर उसकी रहमत है। हर बंदा अपने आप को एक कतरा नहीं, एक तूफान समझे। कतरा अपनी जगह पड़ा हुआ बेकार है, जब उसके अंदर जोश आता है तो वो गिरता है। इस तरीके से वो फिर नीचे आके लोगों को फ़ायदा देता है कि फिर इंसानियत की प्यास बुझती है। अपनी जगह पे छोटे छोटे कतरों को जमा करके आप एक पानी का ग्लास बना सकते हैं। अपनी कोशिशों को बढ़ा के इंसान क्या कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा एक तो इसमें से हमें टीम वर्क का सबक मिला जो बहुत अहम है, और इसके लिए पैगाम रसानी, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगली आयतों में ये बातें होती ही रहेंगी इंशाल्लाह सूरत के आखिर तक। फिर दूसरा पैगाम इधर से एक जो बहुत ही खूबसूरत है, इस पर गौर कीजिएगा। وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ। बारिश और ओलों का तकाबुल करेंगे। बारिश ज़मीन के लिए फ़ायदा मंद होती है, लोग खुश होते हैं, फसलें पकती हैं और बहुत कुछ होता है। लेकिन जब यही बारिश ज़रा से टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से ओलों की शक्ल में ज़मीन पर बरसती है तो खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। ऐसे ही अल्लाह की तरफ आने वाले लोग दो किस्म के होते हैं। जब आप दीन को उसके असल टेम्परेचर पे रख के लोगों को दिखाएंगे ना, बिल्कुल फ़राइज और सुन्नतों के फ़र्क के साथ बताएंगे, ये फ़र्ज़ है, ये नफिल है, इट्स ओके, इट्स अलाउड, इट्स रिकमेंडेड, ये ओके। जब दीन अपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लोगों को दिया जाता है तो ये बारिश बनता है, फुहार बनता है। इस दीन से खुशियाँ आती हैं घरों में। ऐसे दीनदारों को लोग सीने से लगाते हैं, उनको दे के रास्ते खाली करते हैं, इनके रास्तों में वो फूल और पत्तियाँ बचाते हैं कि आओ तुम्हारे आने से हमारे घर का माहौल खुशगवार हो गया, हमारे मुल्कों का माहौल खुशगवार हो गया, और इसी तरह से कुछ और। लेकिन जब इसके बरक्स दीन के नाम पे मस्नूई मेयार कायम किए जाएँ, ऐसे काम कर दिए जाएँ जिसमें तकवा हद से बढ़ जाए, ख़ुद को इतना नेक कर लेना कि उस नेकी तक कोई पहुँच ही ना सके, नामुमकिन किस्म के मेयार नेकी के बुलंद कर दिए जाए ना, कि एक टांग पे कोई चला, कोई सारी रात सोया नहीं, कोई ये नहीं किया, वो तो बिस्तर पे ना लगे, उन्होंने सारी ज़िंदगी रोज़े रखे, सारी रातें इबादत की, तो ऐसा दीन इंसानों पर ओलों की तरह बरसता है। फिर ऐसा दीन लोगों को अच्छा नहीं लगता, हर चीज़ अपनी हद पे अच्छी लगती है। एक्सट्रीमिज़म का इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये खारजियत की एक दूसरी फॉर्म है जिसको पिछले दौर में लोगों ने एक रंग में देखा था, अब दूसरे में देखा। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम लोगों के साथ इस तरह से रहो कि तुम्हारी ठंडी ओस लोगों के दिलों को ठंडा कर दे, फिर तुम देखोगे कि लोग खुद तुम्हें बुलाएंगे। और अगर तुमने झाड़ झंकार वाली और घटा टोप किस्म की और गोलियों की बिछाड़ वाली तबलीग करनी है तो फिर लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। अब इसके बाद जब आयत 44 में का युकल्लिबुल्लाहुल्लैल वन्नहार, इसमें क्या मैसेज है? अब तीसरा इस पर हम थोड़ा सा नुक्ता निकालेंगे। क्या आज लगता है कि मुसलमान थोड़े दबे हुए हैं? हर वक्त लोग मायूसी की बातें करते देखते हैं, आहें भरते हैं, हाय पता नहीं हमारा क्या होगा, मुल्क तुम्हारा हाथ से गया और बच्चे तुम्हारे बिगड़ गए। नहीं, कायनात पे गौर करो, एक तीसरा टीचर भी खड़ा है तुम्हारे पास, और वो कौन है? रात और दिन। पहले अल्लाह ने परिंदों को हमारा उस्ताद बनाया, जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ना किसी भी स्कूल में, एक साइंस पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, एक बायोलॉजी पढ़ाता है, कोई आपको इंग्लिश पढ़ाता है, हाँ बिल्कुल, इस कायनात में हमारे डिफरेंट टीचर हैं। कुछ परिंदों के सब्जेक्ट से वो क्या हमें सिखा रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन, सफ़ें सीधी करो, अपनी लाइनें दुरुस्त बनाओ, कंधे से कंधा जोड़ो। फिर बादल हमें क्या सिखा रहे हैं? कि अपनी सलाहियतों को कम ना समझो, बड़े बन जाओ, कोई बात नहीं, मिल जाओ, तुम कुछ एक काम नहीं कर सकते तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो सारे तुम ही करो। हम बाज़ नुमायाँ बड़ा होना चाहते हैं, हर फन मौला, हर काम कर सकती हूँ मैं, किसी को साथ नहीं लगने दूंगी, तुम्हें तो आता ही नहीं, पीछे हो जाओ, मैं सारे काम खुद ही कर लूँगी, पीछे हो जाओ, मैं कर लूँगी। नहीं कर सकेंगे आप, आपको कुछ नहीं आता ना, आप करने वालों का साथ देना शुरू कर दें और रुकाम बन जाएंगे और फिर वदक निकलेगी। बड़ी धीमी धीमी बारिश को वदक कहते हैं, फुहार की तरह पड़ती है, मेहनत लगती है, काम करते हैं, लगता है कोई नतीजे नहीं निकल रहे। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को इतना कुछ सिखाते हैं लेकिन अंदेशे दिल में आते हैं कुछ नहीं इनको मिल रहा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप देखें वही बच्ची है कि जब शादी होती है या अमली मैदान में आते हैं तो माएँ खुद हैरान होती है, ये वही बच्ची है, इसको घर चलाना आ गया, इसको खाना पकाना आ गया, और यही एक बेकार लड़का है जो आवारा फिरता रहता था, देखो कितना समझदार है। मुझे लगता है इसी तरह उस्तादों के साथ भी होता है, बाजार ऐसे ही लगता है कि कि हम जिनको दीन देना चाह रहे हैं मिल कोई नहीं रहा उनको, फायदा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन कोई एक ही दिन ऐसी खैर की बात सामने आती है दिल खुश होता है। कहा कोई बात नहीं, अगर आज मायूसी है तो रात और दिन को देखो, आज अगर मुसलमानों के हालात तुम्हें थोड़े से इस तरह के दिखते हैं कोई बात नहीं, ये रात दिन में बदलेगी। आज के नाफरमान कल के फरमाबरदार होंगे इंशाअल्लाह ताला, आज के कठोर दिल सख्त दिल लोग कल नरम दिल होंगे। इन नफीजा लिकल इब्रा, इब्रत हासिल करो, नसीहत हासिल करो। अब देखिए हम इन आयतों पर कभी इस एंगल से गौर करते हैं, बारिशें कितनी हमने अपने ऊपर ली होंगी। मैं तो कहती सिर्फ इस बर्फ़ के अंदर आपको इतने सबक मिल सकते हैं जो हमारे रास्तों में आई पड़ी है, यूँ बिछी हुई बर्फ़ है। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं खामोश बातों को भी रिकॉर्ड करूं जो इंसान के दिल में उठती हैं कायनात को देखकर। फिर उसके बाद एक और अब मिसाल आगे दी जा रही है, वल्लाहु खलक कुल्ल दाबत मिम्मा इन, और अल्लाह ने बनाया हर फिरने वाले को एक पानी से। देखो जरा कायनात की तख्लीक, सारे आए एक ही जगह से, पानी सबकी असल थी, लेकिन फमिन हुम मैं यमशी अला बतनी ही, कोई ऐसा है जो अपने पेट पर चलता है। रेप्टाइल्स की तरफ इशारा है, मसलन सांप, छिपकली, आप सोचिए जो भी जानवर आपने ऐसे देखे होंगे, मछली, हशरात, कीड़े मकोड़े, ये सारे क्या है, ये पेट पे चलते हैं। नंबर एक किस्म के जानवर के जो पेट पे चल रहे हैं। फिर दूसरी किस्म के कौन है, वमिन हुम मैं यमशी अला रिजलई ही, वो हैं जो दो पाँव पे चलते हैं, मसलन इंसान, परिंदे। कुछ जानवर हैं जिनकी टांगे चार होती हैं लेकिन वो दो टांगों पे चल रहे होते हैं। और वमिन हुम मैं यमशी अला अरब इन, और कुछ ऐसे हैं जो चौपाए हैं, चार टांगों पे चलते हैं, मसलन कैटल्स, हैवानात, दरिंदे। ये तीन तख्लीकात बयान करके कहा, यखलुकुल्लाहुमा यशा, अल्लाह बनाता है जो वो चाहता है, क्योंकि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। आप देखिए कि ये तीन ही किस्म के जानवर है ना, कोई एक टांग पे चलने वाला जानवर आपको कम ही देखेगा, और अगर होगा भी तो शायद हमारी नज़रों में तो अभी तक नहीं आया। इसी तरह इंसानों में भी तीन तरह के इंसान होते हैं। पहली किस्म के मिसाल कौन सी है, जो सिर्फ पेट के लिए जीते हैं, अला बतनी ही, बतन के लिए, बतन और फर्ज के लिए जीते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको हर वक्त पेट की फिक्र है या फर्ज की फिक्र है, लस्ट के लिए जीने वाले, ख्वाहिशात पे जीने वाले, जिन्होंने अपने आप को नीचे किया हुआ है। दो टांगों वाला रवैया देखिए जानवरों का, ये असल में मतलूब है, अभी इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। दो पे हम चलते हैं, सीधे चलें, ये मतलूब है। तीसरी सूरत है चार टांगों वाली, ये कौन है जो अपनी फर्ज के लिए जीते हैं, जिनकी नज़रें नीचे हैं, बहुत शॉर्ट प्लान्ड है, दुनिया की ज़िंदगी की ज़रूरियात पे जी रहे हैं, घर बार रोटी कपड़ा खाना पीना, बस अपनी ज़ात के लिए जीते हैं। अब आप ज़रा इन तीनों फॉर्म्स को देखें, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कशन करेंगे। पहली बात देखिए कि एक इंसान की ज़िंदगी में बचपन से ले के बुढ़ापे तक ये तीनों कैफियात आती हैं। बच्चा पहले पेट पे क्रॉल करता है, लेटा होता है तो रींगना शुरू हो जाता है, बिस्तर पर डाला पता चला वो किनारे पे आया हुआ था। फिर उसके बाद देखिए बच्चा जब थोड़ा सा उठना शुरू होता है तो फिर चार टांगों पे चलते हैं, कैसे, पाँव भी लगा लेते हैं नीचे और हाथ भी, वो मेंढकी सी बन के चलें या सीधे ही चलें, और उसके बाद फिर दो टांगों पे चलते हैं। तीन रवैये हैं असल में ये। जो लोग ज़मीन पे रेंगते रहते हैं ना, वो कौन से होते हैं, आप ज़रा इमेजिन करें ना, कोई ज़मीन पे लटा लटका ही गया। मुझे इसको पढ़ते हुए आयत वही याद आ रही है जो हमने सूरत अनफाल में गालिबन पढ़ी थी ना, कि अखलदा इलल अर्दी, ज़मीन को लग गया। अल्लाह ने एक शख्स को किताब का इल्म दिया था लेकिन वो ज़मीन से इतना झुका, मादा की इतनी मोहब्बत आई, उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है। चार टांगों का तसव्वुर करें तो जानवर का क्या जहन में आता है, आप किसी भी बकरी गाय को सोचें, नीचे देखेगा ना, अपने ही पाँव के इर्द गिर्द देख रहा है, नीचे दिख रहा है ना, उसको आसमान की बुलंदियाँ दिख रही हैं ना, वो निगाह बुलंद है ना, उसकी ज़िंदगी में कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ये वो शख्स है जो अपनी ज़ात के खौल में घूम रहा है, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, खा रहा पी रहा जुगाली की, खा लिया पी लिया, ज़रा सा भी जिस्म हल्का भी नहीं हुआ तो फिर पकाने लग गए, फिर खाया, फिर धोया, फिर साफ़ किया, फिर बर्तन लगाए, फिर खाया, और सारी ज़िंदगी जानवरों की सतह पे आता है। अल्लाह ने कई जगह कहा, कल अनाम बल हम अज़ल, ख्वाहिशों पे जीने वाले, ज़ात के लिए जीने वाले, सिर्फ खाने पीने को ज़िंदगी का मकसद बनाने वाले जानवरों की सतह पे हैं, बल्कि उससे भी गिरे हुए हैं, जबकि खाएं अल्लाह का और माने शैतान की। इसके बरक्स दो टांगों पे खड़े शख्स को आप जरा आप इमेजिन करें, अल्लाह ने कितनी हिकमत के साथ हमें दो टांगों पे खड़ा किया। देखिए कि दो टांगों पे जो खड़े हैं ना, उसमें भी इंसान यूनिक है। मसलन परिंदे, मुर्गी की दो टांगे होती हैं लेकिन कहाँ होती हैं, इमेजिन करें। अब देखी तो सब नहीं हुई है, लेकिन अब आपको लगेगा कि नहीं देखी हुई, बिल्कुल धड़ के बीच में होती है ना। और किसकी दो टांगे होती हैं? परिंदों की, कबूतर की, सबकी टांगे यूं होती हैं, ये ऐसे आड़ी। इंसान कैसे सीधा खड़े ना? आप सोचे कि इंसान को अल्लाह ने यूं क्यों नहीं कर दिया, फिर ऊपर कैसे देख, फिर उसके अजम छोटे होते। अल्लाह ने हमें यूं करके दिखाया कि तुम सामने और ऊपर देखो, तुम्हारे इरादे बुलंद हो, तुम अपनी जात के लिए भी फायदा मंद हो और दूसरों के लिए भी फायदा मंद हो। लेकिन जब इंसान जानवरों की सतह पे जीने लगता है, तो उस वक्त फिर उसका हाल क्या होगा, वो हर बंदे को पता है कि वो अपने आप को कहाँ पे लेके खड़ा हुआ है। इमाम गजाली का एक कौल है, कहते हैं कि जानवरों की तीन किस्में, एक फायदामंद जानवर दूसरों को फायदा देते हैं, और अमूमन जानवर ऐसे ही हैं। दूसरे वो है जो ना फायदा देते हैं ना नुकसान देते हैं, बस हम देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बस हैं वो, कुछ कहते नहीं हमें। तीसरे वो है जो नुकसान वाले हैं। कहते हैं कि इंसान, अगर तू इंसान नहीं बनता, तू जानवर ही बन के जीना चाहता है, तो कम से कम वो जानवर बन जो दूसरों को नुकसान तो ना दे। नहीं तू नफा दे सकता, तो कम से कम वो बन जा के जो किसी को नफा दे, या नफा नहीं दे रहा तो नुकसान से बचा ले। क्या बता दिया अल्लाह ताला ने इस आयत में कि हर बंदा अपने आप को चेक करे कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, क्या वाकई ख्वाहिशों के पीछे जा रहा हूँ, क्या मेरी जिंदगी यही है, क्या अंधेरों वाली कैफियत तो नहीं। आप देख रहे हैं ना कि आयते नूर के बाद से ये मजमून चल रहा है हमारा, कि कैसे अल्लाह ताला ने रोशनियों के पैगाम को देने के बाद अंधेरों में लोगों को डाल दिया, कि नफ्स के अंधेरे, ख्वाहिशात के अंधेरों में जीने वाले लोग जो होते हैं, वो दुनिया को कोई खैर नहीं दे पाते। दिल बड़ा चाहता है उनका, देने को दे नहीं पाते, क्योंकि मुनज्जम नहीं होते, मुत्तहिद नहीं होते, आपस में मोहब्बत नहीं होती, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होता, बदगुमान होने लगते हैं, इताअत और समा और इताअत का निज़ाम नहीं चलता, इसलिए आज हम कमज़ोर हैं। वरना याद रखे, जितनी रहमत बादलों से बरसती है, इंसानियत को कितना फ़ायदा देते हैं बादल, क्या इंसान उससे ज़्यादा नहीं दे सकते? वो तो पानी दे के प्यास बुझाते हैं, इंसानों को तो अल्लाह ताला ने रूहों की ग़िज़ा देने वाला बना के रखा था, लिहाजा अंधेरों से निकल कर रोशनियों के साथ जुड़ने वाला इंसान यही अपने और दूसरों के लिए बामकसद होगा। फिर आगे फरमाया, लक़द अनज़लना आयात मुबय्यिनात, हमने उतारी ऐसी आयतें जो हक़ को साफ साफ बयान करती हैं। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, और अल्लाह जिसको चाहता है सीधे रास्ते पे चलाता है। आयतें सबने सुन ली, सूरत नूर पूरी होने के करीब है, खोल खोल के बयान हो गई, हर मसला वाज़े, हर बात खुल गई, बामकसद और बेमकसद ज़िंदगी का फ़र्क पता चल गया। इसके बावजूद तौफीक उसको ही होगी जो मैं यशा, जो चाहेगा, जिसके दिल में तड़प होगी, जिसके दिल में ख्वाहिश होगी। सुनते सारे थे, आज भी सुनते हैं, और जब ये सूरत नाजिल हुई तब भी बहुत सारों ने सुनी, लेकिन अल्लाह की आयात मुबैनात को सुनने के बाद लोगों के जो दो रवैये होते हैं, अब उनका तस्करा, कई आयात इस तकाबुल पे चलेंगी। पहले अल्लाह ताला ने ईमान वालों के बरक्स दूसरे लोगों का तस्करा किया, गौर से सुनिएगा। व यकूलून आमन्ना बिल्ला, और वो कहते हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर, मान गए। सूरत नूर को जहन में ला के सोचिए, सारा पैगाम उसी में ही है कि सुन ली बातें, हाँ जी हम मान गए, ये अल्लाह की तरफ से, व बिर रसूली, बिल्कुल और रसूल की तरफ से भी हैं सारे अहकामात, सारा प्लान, एक इस्लामी माशरे का निज़ाम जो दिया अल्लाह के रसूल के जरिए, हम बिल्कुल मान गए। और दावा क्या करते हैं? वाताना, हम मानेंगे जी, बस अब समझ आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वही बात है कि इन्ना इंशाअल्लाहु लमुख्तदून वाली कैफियत गाय के वाक्य में, हाँ पता चल गया कैसी गाय अल्लाह को चाहिए थी, किस रंग की हो, कैसी हो, अब हमें भी अल्लाह की मर्ज़ी समझ आ गई है। लेकिन ये दावा करके जू ही यहाँ से उठते हैं, सुम्म यतवल्ला फरीकुम मिन्हुम मिन बादि ज़ालिका, फिर मुंह फेर लेता है एक फ़िरका, एक गिरोह उनमें से, किससे मुंह फेरता है? ईमान और इताअत से, इस दावे के बाद। मिन बादि ज़ालिका, ज़ालिका क्या है? ये दावा। वमा उलाइका बिलमुमिनीन, ये लोग ईमानदार ही नहीं है। नोट कीजिएगा, मैंने इस जुमले को पढ़ा ना, तो मुझे फौरन सूरह बकरा का वो जुमला याद आ गया जो मुनाफिकीन के लिए आया था, कि वो तो क्या कहते हैं, वमिनन नासि मन यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल्यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। यहाँ क्या कहा? वमा उलाइका बिलमुमिनीन, यहाँ रखिए, यहाँ बिल जो है ये साथ के मानों में नहीं है, ये बाज़ ज़ायद है, मानी बदल जाएगा बिल्कुल, बाज़ ज़ायद एक्स्ट्रा बा है, यानी अल्लाह ताला ये नहीं कह रहे वो ईमान वालों के साथ नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है वो हैं ही नहीं ईमान वाले, पीछे करो इनको। जैसे सूरह यूसुफ में हम पढ़ चुके हैं ना कि कितने ही है जो तौहीद का इकरार करने वाले, खुद को मोमिन कहने वाले, वो असल में मुशरिक होते हैं। व मा युमिनु बिल्लाहि अक्सरुहुम इल्ला वहुम मुशरिकून, बिल्कुल यहाँ वही दावा लग रहा है कि अल्लाह कह रहे हैं ये कहते रहे वी आर मुस्लिम, इनका नाम किसी भी रजिस्टर में मुसलमानों के नाम पे आए, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में मुस्लिम्स के नाम पे हैं, ग्लोब में ये मुस्लिम मुल्क के नाम पे हैं, अल्लाह का फैसला क्या है कि ये मोमिन ही नहीं है। बस कहते हैं कि ये आयतें एक शख्स के बारे में नाजिल हुई, था मुनाफिक, नाम इसका बिशर था, यहूदी से इसका तनाज़ा हुआ, इसने कहा कि चलो अल्लाह के नबी के पास चलते हैं, जो उसने कहा कि चलते हैं अल्लाह के नबी जो फैसला कर दें। अब ये बिशर झूठा था, दिल में चोर था, यहूदी से उलझ रहा था ऐसे ही, इसको पता था अल्लाह के नबी के पास गए तो मामला नहीं चलना, आप तो चाहे यहूदी है या मुसलमान हक का साथ देंगे और सिफारिश को चलेगी नहीं ना मेरी तरफदारी होगी। तो नाउज़ुबिल्ला इसने कहा कि अन्ना मुहम्मदन यहीफ अलैना, नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला, कहने लगा नहीं नहीं मोहम्मद तो साइड लेंगे दूसरे की, खाफ यहीफू से होता है ना, झुकेंगे, ये तो बहुत कुछ लोगों को पसंद करते हैं, ये तो फेवरेटिज्म का शिकार है, मेरी बात तो मानेंगे नहीं, चलो काब बिन अशरफ के पास चलते हैं, क्योंकि वो यहूदी अदालत का बड़ा सरबराह था और इसको पता था कि उलमा यहूद में ये बात आम है कि कुछ ना कुछ हाथ गर्म कर दिया जाए तो मतलब का फैसला हो जाता है, इसके ऊपर कहते हैं आयतें नाजिल हुई। और वो वाक्य आपको याद है, आप सूरत निसा में पढ़ चुके हैं कि उसी पे फिर हजरत उमर ने उसका सर कलम कर दिया था। तो बाज़ रिवायतों में आता है कि ऐसे लोगों का ये तस्करा है कि जब इनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए, व इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुमा बैनहुम इज़ा फरीकुम मिनहुम मुरीदून, और जब वो बुलाए जाते हैं अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि फैसला कर दे इनके दरमियान, तो उस वक्त इनकी एक जमात उससे रूगरदानी करती है। ज़ुबान के दावे बहुत हैं, अमली ज़िंदगी में जब अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाया जाए तो मुंह फेरते हैं बिशर जैसे लोग, लेकिन इसके बरक्स वहीं यकुल लहुमुल हक, और जब फैसला इनके हक में हो यानी इनका हक निकलता हो तो इनको खूब फिक्र होती है, और जब इन्होंने हक देना हो तो देते ही नहीं है हक, वजह क्या है कि इनके दिल में खोट है। आप देखिए कि कुछ लोग होते हैं ना शराकत पे काम करते हैं, दो भाई काम कर रहे हैं, साझा खाता है, कुछ नफ़ा कुछ नुकसान, अब एक भाई को पता होता है कि मैंने ज़्यादा लिया हुआ पैसा, दूसरे गरीब का खाया हुआ मखा, जब वो कहेंगे आओ बैठो हिसाब कर लें, वो टाल देगा, उसको पता है कि जिस दिन हिसाब करने बैठे हाथ से देना पड़ेगा। यही बात कुछ लोगों की अल्लाह और उसके दीन के साथ होती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं दीन की, खूब बातें करते हैं दीन, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है हमें दीन, कब जब उस पर अमल ना करना पड़े, जब उसको पढ़ के सवाब लेना चाहें, आयतें पढ़ें, कुरान पढ़ें, सिफारे पढ़ें, अल्लाह का नबी माशाल्लाह बड़ा प्यार है उन पे, कब रबीउल अव्वल आएगा, मिलाद पढ़ेंगे हम, एक जलसा निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, कुछ खाने पकाएंगे और बस, फिर उसके बाद शादी पे जाएंगे रात को, जिसमें मेहंदी की आज दावत है और जिसमें रात को फिर वहाँ बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाया हुआ है, वहीं यकुम लहुमुल हक, हक आता है उनके ऊपर तो या तू इलैहि मुज़अनीन, तो तस्लीम करते हुए आते हैं, कुछ लेने की उम्मीद हो तो खुशी खुशी आ रहे होते हैं। मुज़अनीन मुज़इन की जमा है, ज़ाल ऐन नून इसका रूट है, नया लफ्ज़ है आपके पास, यानी कि उस वक़्त हक जताते हुए आते हैं, किसी चीज़ में अपना हक साबित करना या किसी चीज़ में अपने आप को रखना। इज़ान अरबी ज़ुबान में आता है इकरार और इताअत के लिए, यानी बड़े मती होते हैं, आप कह लें कि मुज़ऐनीन यहाँ बमानी मुतीईन है, मती बनकर बड़ी खुशी खुशी आते हैं कि अब चूंकि हमारा कुछ मिलने वाला है हक, हम जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं अफ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, क्या इनके दिलों में मरज़ है, बीमारी है, निफाक की बीमारी है, माल की मोहब्बत की बीमारी है, इताअत ना करने की बीमारी है, अपने पेट का पानी नहीं हल्का करना चाहते, ये इतनी बीमार है ये, या फिर अमीरताबू, ये दूसरी चीज़ है। इस आयत में तीन बुनियादी चीज़ें हैं बेअमली की, मैं तो इस आयत को कहती होती हूँ अक्सर के मार्कर के साथ लिखें अपने नोटबुक्स में, जब भी लोग अल्लाह का कोई हुक्म सुने, आयात मुबैनात, चाहे वो पर्दे का है या सबमिशन का है या टीम वर्क का है या इताअत का है, ये तीन बातें होती हैं उसको ना मानने की। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा को आप तीन खानों में बांट सकते हैं, कुछ इसलिए नहीं अमल कर रहे, फ़ी कुलूबिहिम मरदुन, बीमार है दिल इनके, बोझ ही नहीं उठा सकते, दिल के मरीज़ हैं, प्रेशर ले ही नहीं सकते अल्लाह के हुक्मों का। इतने कंधे कमजोर हैं कि 2 गज का टुकड़ा नहीं इनके कंधों पे आ सकता। इतना सर कमजोर हो गया कि कहते हैं सर पे कपड़ा लेते हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। वल्लाह ही मैंने लोगों से सुना कि मैं जब सर पे स्काफ लेती हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मुझे सांस घुटता है। किसी ने कहा मुझे सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है, मैं जब नकाब लेने का सोचती हूँ या मैं करूँगी तो मुझे वो अस्थमा की तकलीफ होने का डर होता है। अभी बीमार हैं बेचारे, कमजोर हैं। देखिए एक चीज याद रखिए, लिख लें, सबसे बड़ी एनर्जी आपको जो मिलती है ना, किससे मिलती है? वाइटामिन से मिलती है, कैल्शियम से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, किसी से नहीं मिलती। ग्लूकोज से नहीं, सबसे बड़ी जो एनर्जी मिलती है वो ईमान से मिलती है। आपके अंदर ईमान आएगा ना, आप भारी कपड़ों का बोझ भी सहार लेंगे, फिर भी आप लगेगा आपको कि नहीं ये अच्छा कपड़ा नहीं मैंने चुना, अभी भी मेरा जिस्म झलक रहा है, अभी भी लोगों को मेरी शेप दिखती है, अभी भी लोगों को अंदाजा हो जाता है कि मेरा फिगर क्या है। ये भारी वजन आप और बोझ भी डाल के अपने आप को लाइट फील करते हैं, कुछ दिमाग नहीं गर्म होता, कुछ नहीं होता। और जब अंदर ईमान कमजोर होता है तो आप 1 गज एक शिफून के, क्या आप सी थ्रू भी कपड़े पहन के अपने आप को कहते हैं नहीं गर्मी बड़ी है, जान निकल रही है, लगता है सारे ही मर जाएंगे गर्मी में, गर्मी की वजह से। और मरती भी फिर औरतें, मर्दों ने मोटे कपड़े पहने होते हैं गर्मियों में, औरतों को इतनी गर्मी लग जाती है कि सी थ्रू लॉन की शलवारें कपड़े पहन पहन के भी उनकी जान पे बनी होती है, फिर भी उनके अंडर गारमेंट्स दिखते हैं, फिर भी कहती हैं पता नहीं गर्मी इतनी क्यों है, मरी ना जाए हम। फिर कटती हैं बाजू तो छोटी बच्चियों की कटती हैं, स्लीवलेस बाजू वाले फ्रॉक पहनाते हैं तो लड़कियों को पहनाते हैं, लड़के की नहीं जान निकली बच्ची की चली गई, क्योंकि अफीकलू बेहम मरदुन, अंदर जो बीमार है ताकत जो नहीं है। कुछ बीमारी होती है बाजार बंदा बड़ा मोटा भी लगता है। याद रखें ये बड़ा खतरनाक जुमला बोलने वाली हूँ मैं अभी, हम सब के अपने ही मेयार को चखने का। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें बहुत मोटे लगते हैं, अंदर से आप बीमार होते हैं। इसी तरह कुछ लोग बाजार बड़े नेक मशहूर हो जाते हैं लोगों में, अल्लाह माफ़ करे, शोहरत से बचाए अल्लाह ताला। और दीन की शोहरत अगर हो तो सच्ची ही हो, वरना बिल्कुल ना हो। कुछ लोग दुनिया की नज़रों में मोटे दीन के पहाड़ बने होते हैं, अंदर से कमज़ोर है, पानी होता है अंदर, वरम हुआ होता है, सोजिश होती है। ये बीमारियां जो अल्लाह के हुक्म मानने नहीं देती, जो जुड़ने नहीं देती, जो युअल्लिफु बैन वाली कैफियत नहीं होने देती। दूसरी वजह जिसकी वजह से अमल नहीं हो पाता, मेरे ताबू शक है, डाउट्स है, आई एम स्टिल कन्फ्यूज, माई माइंड इज़ नॉट क्लियर येट, नहीं मुझे अभी भी डाउट है, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट नॉट, ये नहीं हो सकता। और आज के दौर में तो हो ही नहीं सकता, और इस जगह में तो हो ही नहीं सकता, और नमाज मैं पढ़ूँ जॉब पे, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। ये दूसरी वजह होती है, शक का कीड़ा लगा होता है, या जो बात कह रहा है उसके बारे में शक है, नहीं ये एक्सट्रीमिस्ट है, नहीं ये बहुत सख्त दीन लोगों को बता रहे हैं, नहीं, ये लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए हैं। ये शक है जो बहुत सारे लोगों को दीन से दूर कर देता है। और तीसरी वजह, अम यखाफून अन यखीफ अल्लाह अलैहिम व रसूलु, इसको पढ़ते हुए तो छम छम रोने को दिल चाहता है। अल्लाह कह रहे हैं या फिर इनके दिलों में ये अंदेशे हैं कि अल्लाह और उसका रसूल हम पे जुल्म करेगा, अल्लाह और उसका रसूल तो औरतों का दुश्मन है, ये तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो सारा दीन ही औरतों के खिलाफ बना हुआ है। या तो इनको ये शक है कि अल्लाह और उसका रसूल ऐसे हुक्म दे रहा है कि जिससे ये मर ही जाएंगे, इतने सख्त जिहाद के हुक्म मर्दों को दे रहा है कि मर्दों की तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएंगी, ये शक है। और वल्लाही आज के दौर में ये शक आम किया जा रहा है कि नाउज़ु बिल्लाह, ना अल्लाह को शरीयत देनी आती थी और ना रसूल को लेनी आती थी, कैसे आज के दौर में फिट हो सकते हैं हम इन चीज़ों पे? अल्लाह करे इन तीनों में कोई एक वजह तुम्हारे दीन से रुकने की, बल उलाइका हुमुल ज़ालिमून, ये है चौथी वजह जो बिल्कुल सही है। इन तीन में से जो सबसे बड़ी बात निकली, अल्लाह के दीन को सुन के, उसकी बात को सुना के, बता के अगर अमल नहीं होता तो मान जाओ कि तुम जालिम हो, हक नहीं दे रहे तुम। जालिम मुशरिक के लिए भी आता है ना, हक ना देने वाला, यानी फिर तुमने दीन का हक नहीं दिया। तुम सिर्फ इसलिए पढ़ने बैठे हुए हो कि तुम एक दफ़ा सबके सामने इस बात को इकरार कर सको, मैंने कुरान पढ़ लिया, कोर्स पूरा हो गया, इसका तर्जमा रहता है वो कर लूँ, इसके असाइनमेंट रहते हैं कर लूँ, मैं अपने ड्यू सारे क्लियर कर दूँ, मैं अपने नाम लिख लूँ कि मैंने कोर्स किया है। तुम इस सोच से सुन ही नहीं रहे, और ना तुम सुना रहे हो कि तुमने इन बातों को अपनी अमली ज़िंदगी में लाना है। तुम तो अपना नाम चाहते हो कि मैं कहूँ हाँ मैंने एक और बैच को बढ़ा लिया, हाँ मैंने एक और मुल्क में अपने झंडे गाड़ दिए। क्या होगा इन झंडों का और क्या होगा उन पढ़ाने वालों का अगर तुमने खुद अमल ना किया अल्लाह की बातों पे? तो ये है सबक यहाँ पे बुरा होता है कि किस तरीके से जब मुसलमान होते हुए इंसान अल्लाह के दीन को अपनी तरक्की के रास्ते की रुकावट समझे, उसके बारे में दिल में डाउट्स आए, शुबे आए, शक आए, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी काम के नहीं, वो बिलियंस में हो जाएं। तकरीबन इस वक्त 3 बिलियन के करीब मुसलमान हैं दुनिया में। क्यों तब्दीली नहीं आ रही, क्यों नहीं है समझ आती, वजह क्या है? इन 3 में से एक खाने को अपने अंदर ढूंढें, जिस मसले पे भी। अगर अभी तक नमाज ठीक नहीं, तौहीद ठीक नहीं, अल्लाह के नबी के साथ ताल्लुक ठीक नहीं, शरई पाबंदियाँ ठीक नहीं, इस्लाम के तकाजे ठीक नहीं, रहन सहन ठीक नहीं, शादी मंगनी ब्याह ठीक नहीं, हर बंदे का हर अमल फ़र्क होता है। कुछ 99% चीज़ों पे अमल कर रहा होता है, 1 पे कहता है खैर है ना, अब अल्लाह ने ये थोड़ी पूछना है, वो भी पूछना है। हम एक बात को भी छोड़ के नहीं कर सकते, ये मुत्तफिक फैसला है कि जिसने पूरे दीन को माना और किसी एक चीज़ का शौरी इनकार कर दिया कि मैं सारे दीन को मानता हूँ लेकिन मेरा नहीं ख्याल के रोज़े रखने को लाजमी है, फरमाया कि उसने पूरे दीन का इनकार किया। या आगे हम बात करेंगे सूरत शुरा में गालिबन कि जहाँ आता है कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन, वहाँ इंशाल्लाह आप इसको दोहराऊंगी कि एक रसूल का इनकार किया था एक कौम ने। कौम नूह ने सिर्फ हज़रत नूह का इनकार किया था ना, कौम सवाले ने सिर्फ हज़रत सवाले का इनकार किया, लेकिन अल्लाह एक सूरत में तकरार से कहते हैं इन्होंने मुरसलीन का ही कर दिया। तो उस पर उलमाए कराम लिखते हैं कि ये मुरसलीन कैसे हो गए, कहा इसलिए कि जिसने एक रसूल का इनकार किया सबका इनकार किया, जिसने शरीयत के एक हुक्म का इनकार किया शौरी इनकार है। देखिए अमली कमियाँ हो सकती हैं, इंसान में कमी बेशी है, आज चल रहे हैं गिरेंगे, बच्चा चल रहा है उठ रहा है, कोशिश कर रहे हैं, आप कभी अपने अंदर ताकत ला रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब बंदा उस पर राजी होके बैठ जाए, जहाँ आज से 5 साल खड़ा था स्ट्रक था वहीं खड़ा है, डाउट ही नहीं जा रहे, फिर उसके लिए फिक्र की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।